से ये प्रचारित हो रहा है कि हम जब भगवान में मिल जाते हैं और भगवान हो जाते हैं, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। ये नरक से भी बढ़कर के अधिक खराब है। एक मधुमक्खी एक चींटी मधुपान करने गई, पृथक रह करके उसका रसास्वादन किया जा सकता है, और यदि मधु के बोतल में वो यदि पड़ जाए और उसमें लिपट लिपट करके वो स्वयं ही मधु हो जाए तो कोई उसको चाट लेकर के खा जाएगा। हमको मधु ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म नहीं होना है, यह सबसे गंदी बात है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई भी उदाहरण नहीं है जो किसकी ऐसी मुक्ति हुई है। लोगों को लुभावना देकर के ऐसा करते हैं, यथार्थ में मुक्ति वही है भगवान के चरणों की सेवा, और ये मुक्ति में ये भगवान में मिल जाएंगे। अच्छे कल क्या लाभ क्या हुआ भगवान में तुम मिल गया तो? भगवान को ये जो मुक्ति है साई जी मुक्ति भक्तों को दिए जाने पर भी भगवान के द्वारा ये नहीं लेते हैं। क्यों? ये एक अभिसंपात है, भगवान की सेवा वहां पर नहीं हो सकती है, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। वो तो एक इंटरनमेंट है। इंटरनमेंट किसको कहते हैं? किसी को अपने घर में, बड़े बड़े राजनीतिक लीडरों को घर में बंद कर दिया जाता है, किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं तू हमें मिलेगा, इसलिए अपने अंगों में उसे रख लेते हैं और उसकी चेतन शक्ति को भी लुप्त कर देते हैं, उसको रस का आस्वादन करने के लिए भी जो शक्ति है उसको भी बंद कर देते हैं। वो समझता है कि मैं भगवान में लीन होकर के क्या हो गया, नहीं कुछ अनुभूति नहीं रह, इसलिए भगवान के भक्त नहीं लेते, यानी दिए जाने पर भी नहीं लेते हैं। इसमें परम निर्भीक सत्य की बात ये कही गई, देखो हम कृष्ण के नित्य दास हैं। गुरु भी यदि इस कृष्ण का भजन नहीं करता है, सदाचार अवलंबन नहीं करता है, तो ऐसे गुरु को भी छोड़ दो। मैया और बाप यदि भगवान का भजन नहीं करते हैं तो ऐसे पिता को पुत्र उत्पन्न करने की कोई भी अधिकार नहीं है। गुरु को भी के लिए जब ये कहा गया, यदि वो भजन नहीं करता है, अपने गुरु को छोड़ दिया और गुरु के विचारों को नहीं मानता है, नहीं लेकर के चलता है, जो अपने गुरु की सेवा नहीं करता है, तो उस गुरु को तत्क्षणात छोड़ो। ऐसे गुरु जो अपने गुरु की नहीं सेवा करता, बात नहीं मानता, माता पिता को पुत्र उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है यदि अपने पुत्र से भगवत भजन न करा दे। यदि नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को छोड़ दिया, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने, मीरा जी ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, हमारी स्थिति बड़ी संकटजनक है, घर वाले हमको भगवान का भजन नहीं करने देते, पति भगवान का भजन करते ही तलवार लेकर के उपस्थित हो जाता है, सास ससुर और घर वाले विरोधी हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, पत्र लिखा, जिनके प्रिय न राम वै देही तजी कोट बैरी समझत परम स्नेही, तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजऊ कंत बन ब्रजतन भय जग मंगल खाय। तजऊ पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को छोड़ दिया, मैया को छोड़ दिया, वंश परंपरा को छोड़ दिया। तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, क्योंकि राम का कि सीता को वो चोरी कर लिया, उनसे युद्ध करने जा रहा, छोड़ दिया सदा के लिए। भरत जी ने अपनी मैया को छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? अब तुम्हारा माता और बेटा का संबंध नहीं है, मैंने काट लिया, अब तुम मेरी मैया है नहीं, तुम महाराज दशरथ की रानी हो, कैकई महारानी हो। कैकई के रोने पर भी फिर से उनको मैया ना कहा, राम के कहने पर भी उन्होंने मैया नहीं कहा। जब रामचंद्र जी लौट करके आए, लंका विजय के पश्चात में 11,000 वर्ष राज्य किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी मैया को मैया कहते हैं, राम उनको कैकई को मैया कहते हैं, किंतु भरत अपनी मैया को मैया नहीं कहता। तो एक दिन राम के पास में गए, बोले जिसे तुम यदि कह दो तो हमको मेरा बेटा भाई मैया कह सकता है। मेरी यही एक अरमान है, जब मरूं किंतु बेटा हमको एक बार माँ कह दे। रामचंद्र जी ने बुलाया भरत को, भरत एक बात है, मैं तुमसे आज तक कुछ नहीं कहा, एक तुमसे निवेदन है, मेरी बात पूरा करना। उन्होंने कहा, सोचा, सोच करके बोले, महारानी कैकई को मैया कहने के अतिरिक्त आप जो कुछ कहेंगे वो सब कर लूंगा। नहीं कहा, क्यों? जिनके प्रिय न राम भेजी, राम को वन में भेजा, इसलिए मैया का संबंध क्या रहा? महाराज बलि ने अपने गुरु जी को प्रत्याग कर दिया, क्योंकि वो जब भगवान को दान कर रहे तीन पे भूमि, तो उन्होंने मना किया, ये तो ब्रह्म है, राम भगवान है, ये तो तीन पैद में तुम्हारा सर्वस्व कुछ ले लेगा, तुमको रहने के लिए जगह नहीं होगी। बलि महाराज ने कहा, जी तो बा मेरा सौभाग्य है, यदि यही भगवान है और ले लेंगे तो ये तो सब समय ले सकते हैं, तीन को क्यों ना दूं, मैं दूंगा। मैं कह देगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। कोई बात नहीं, सर्वनाश हो जाए। तो अभी जब संकल्प करने के लिए बैठे तो गड़ियों के ऊपर में बैठ गया, पानी नहीं आने दे। तो भगवान ने क्या किया, जो भगवान की भक्ति में बाधक देता है, एक कुश लिया और कहा, जी महाराज इसमें छेद कीजिए, कुश से कुछ अटक गया है। तो अटका क्या, उनका आंख ही वहां पर था, उस आंख को फोड़ दिया, बाई आंख फूट गई, रक्त की धारा निकलने लग गई। तो भगवान के भजन में जो बाधा देता है, बलि महाराज उसे तोड़ दिया, उनको दूर कर दिया, और उनकी एक आंख भी अंधी हो गई, एक आंख से अंधे हो गए। इसलिए भगवान को जो प्रिय नहीं है, भगवान से कोई संबंध नहीं, ऐसे पति से भी कोई लाभ नहीं, ऐसे पिता से भी कोई लाभ नहीं, ऐसे बंधुओं से भी लाभ नहीं है। ये भगवान का ऐसा भजन होना चाहिए। फिर प्रसंग क्या कर रहा था, हो गया चलो। हाँ, तो ये मुक्ति मत चाहो कभी भी, मुक्ति ये चाहो कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति लगे, संसारिक आसक्ति कट जाए और नित्य उनकी सेवा मिले, ये तो मांगो। ये मुक्ति यथार्थ मुक्ति है, इसके अतिरिक्त ये भगवान में मिल जाऊं ये मत मांगना। तो ये भागवत में इसका सर्वत्र निरादर किया गया, यहां तक कि आत्माराम जैसे सुखदेव गोस्वामी, सनक सनंदन, ये लोग भी मुक्ति के कार अंत में बैठे हुए हैं, मिलने ही वाली है वो भी, किंतु इन्होंने भगवान का गुण जब नाम गुण रूप लीला सुना व्यास देव जी से, तो सुखदेव भी एकदम उनके पास में दौड़े। ऐसे ही भगवान का लीला और गुण है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अरुक्रमे कुरुवंत इत्थम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े योगी लोग आत्मा राम को भी खींच करके ये ला देता है, तो और दूसरों की तो बात कहे। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की बात कही गई है, उन्होंने इसीलिए श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसका सुन करके लोग नित्य निरंतर जब तक ये चलेगा सृष्टि, तब तक ये लोग भगवान की तरफ में आ सकते। विशेष करके कलयुग आ रहा है, भगवान के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। वेदों को काल्पनिक कहते हैं, माइथोलॉजी कहते हैं उसको। इस तरह से बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का ये सब चारों तरफ में ये बढ़ रहा है सब। इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करने की इच्छा होने से ही, श्रवण करने की बात नहीं, यदि श्रवण करूंगा श्रीमद् भागवत, बस आपकी मुक्ति पहले ही हो जाएगी संसार से, और भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर दिए। और यदि प्रेम से सुना तो परीक्षित महाराज जी जैसी गति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भागवत का पूरा भागवत नहीं हो, आधा भागवत नहीं हो, एक अध्याय का आधा, यहाँ तक कि एक श्लोक उसका आधा श्लोक, एक चरण भी यदि सुन लिया, एक अक्षर भी सुन लिया, मुक्ति तो उसके चरणों में लौटेगी, और भगवान उनके बन जाएंगे। ऐसा ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। प्रत्यक्ष उदाहरण बहुत से हैं, मैं समय अनुसार से इसका दूंगा। वंदना करने के बाद में निगम कल्प तरूर गलितंग फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये भागवत इस जगत का नहीं है, व्यास जी ने बनाया नहीं, समाधि में देखा उन्होंने, उपलब्धि किया, अनुभव किया, ये गोलोक वृंदावन की है, गुरु परंपरा की धारा से वहां से आ रही है। कैसे आ रही है? कृष्ण जगत गुरु हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण जगत, उनसे ये आया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से सुखदेव गोस्वामी, उसी तरह से गुरु परंपरा की धारा से अब तक हम लोगों की धारा में ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी प्यार, इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी, स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी इत्यादि रूप सनातन, धीरे धीरे नीचे की तरफ में चलता हुआ नरोत्तम ठाकुर जी, उससे भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, धीरे धीरे बलदेव विद्याभूषण जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उसके बाद में हम लोगों की गुरु परंपरा इस तरह से अब तक चली आ रही है, चलेगा। ये विश्व का कितनी भी सृष्टि और प्रलय हो, ये धारा रुकी नहीं चल, कभी कभी छिप जाएगी, ये बात तो ठीक है, किंतु कभी भी नष्ट नहीं, परंपरा नष्ट नहीं होगी, उसी की परंपरा से श्रीमद् भागवत आ रहा है। कैसा रसमय ग्रंथ, आम में गुठली और छिलके होते हैं, रेशे भी होते हैं, किंतु ये ऐसा रस ग्रंथ है, गुठली नहीं, छिलके नहीं, रेशे नहीं, फेंकने लायक कोई चीज, रस ही रस है। पीवत भागवतम रसमालयम, इस ग्रंथ को का रस पीजिए, कैसे? मुख से नहीं, कानों से पीजिए। आंखों से देखने में कभी ठग सकते हैं, गुरु कान लेता है और कुछ नहीं, कहा या तुम अपना कान दे दो, मैं कान शुद्ध कर करके तुमको वो वस्तु ब्रह्म को कृष्ण को दे दूंगा। क्यों? कान में और इंद्रियों में कुछ वैशिष्ट्य है, कान की जिस चीज को ग्रहण करता है, आंख हाथ पैर दूसरी इंद्रियां नहीं ले सकती, और जिसको ये लोग लेते हैं वो नहीं लेता। कान लेगा शब्द, उस शब्द को न तो आंख देख सकती है, न तो हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी इंद्रिय उस पर काम नहीं कर सकती, इसलिए गुरु कहता है कि अपना कान दो, और कान के माध्यम से ये शब्द ब्रह्म रूपी ये नाम देता है। नाम दो प्रकार के हैं, एक नाम है साधारण, वाइब्रेशन ऑफ साउंड, अर्थात शून्य में जीवा जब चलती है, तालू और दांतों से स्पर्श करती हुई चलती है, तो गले के कसरत से निकला हुआ वो हवा ही साउंड के रूप में होती है, जैसे ये शब्द हुआ ना, ये खाली और इसमें ऐसे किया शब्द हो गया, ऐसे हमारे मुख में ऐसे तालू और जीवा दांत बने हुए हैं, और गले से जो हवा निकलती है श्वास प्रश्वास, उसमें से ये साउंड निकल रहा है। इसके द्वारा जो शरीर के कसरत से जो नाम लिया जाता है वो शब्द ब्रह्म नहीं है, वो क्या है? इमिटेशन है, वो भगवान का नाम नहीं है। जड़ इंद्रियां, जड़ जीवा, ये भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, क्यों? अप्राकृत है, और ये सब है प्राकृत। जब नाम इस पर अवतीर्ण होकर के नित्य करना होता है, आपने आप जीवा चलने लगेगी, नाम छिड़कने लगेगा जीवा पर, वो नाम नाम शुद्ध नाम, इसलिए उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। गुरु अपने आप साधन भजन कर, उसकी अनुभूति कर, भगवान को वशीभूत कर, नाम के रूप में शिष्य के कान में ये शब्द ब्रह्म देता है, इससे तो सिद्धि हो जाएगी। किंतु गुरु परंपरा की धारा में जो लोग नहीं आए हैं, गुरु से सिद्ध नाम नहीं मिला, जो गुरु गुरु नहीं है, जो लोग जगत को ठगने वाले हैं, कभी नाम नहीं किया, कभी एक माला कर दिया या दो नाम, इसे नहीं। शुद्ध नाम उसके हृदय में भगवत अनुभूति के साथ में उसको हो, भगवान जिसका कहना मानते हैं, ऐसे गुरु जो लोग हैं वो लोग भगवान का नाम दे सकते हैं, और वो पुष्ट नाम शब्द ब्रह्म है। और जो लोग सुधीन हरि नाम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, वो क्या नाम देंगे? उन लोगों से पैसा ठगते हैं, जे तुम अपना अब से तुम मेरे हो गए, अब तुम्हारी धन संपत्ति मेरी हो गई, कुछ न कुछ तो दिया कर। और गुरु कहता है क्या, तुम्हारे धन से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, इसको तो मैं छोड़ करके आया हूं, प्रतिष्ठा भी छोड़ करके आया, हम तुमको जो धन देंगे वो धन को तुम लो, तुम्हारी संसारिक आसक्तियां कटे। ये भगवान का जो नाम है यही परम धन है, राधा नाम परम सुखदायी, ये नाम तुमको मैं दूंगा शब्द ब्रह्म, तुम इसका अभ्यास करो, गुरु की सेवा करो, और गुरु की सेवा से धीरे धीरे तुम्हारी नाम निर्मल होगा, शुद्ध होगा, और यही भगवत राधा और कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेगा, ये नाम देता है। तो ये भगवान का नाम कैसा है? रसमय है, शब्द ब्रह्म है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नाम, नहीं ये नहीं, और दूसरा एक नाम अरे नहीं चिथर, जो नाम रस है, रस स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस विग्रह। अब ये नाम करता है इसमें तो हम सो जाते हैं, कभी कभी नाम करते हैं रुचि नहीं होती। जब शुद्ध नाम होगा तो राधा और कृष्ण को देखोगे इसी नाम के अंतर्गत में, कृष्ण की जितनी भी रास लीलाएं हैं सब इसी नाम के अंदर में देखोगे, कृष्ण की सारी लीलाएं इस नाम में देखे, फिर नींद नहीं और आलस्य नहीं आएगा, सो जाओगे सवेरे उठो देखो जैसे हरे कृष्ण नाम हो रहा है। कुछ दिन अभ्यास करके देखो, सब आसक्तियां दूर हो जाएंगी और तुमको परम सुखमय आनंद की अनुभूति होगी। ये नाम ऐसे हैं, वंदना करने के बाद में कहते हैं क्या है, यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् विरहकात् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु सर्वभूत हृदयम् मुनिमान। पहले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, जिनका गुरु नहीं है भजन कर रहे हैं उसको क्या होगा, गुरु नहीं है। भगवान का अर्चन में पहले गुरु जी का अर्चन करना पड़ता है, और यदि गुरु जी का अर्चन नहीं किया भगवान का अर्चन करोगे तो भगवान ग्रहण करेंगे? तो जो लोग ऐसे हैं जिनका गुरु है ही नहीं है, तो नाम करने के पहले किस गुरु को प्रणाम करेंगे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु भी जरूरी है करना, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो सचमुच में सदगुरु हो, ब्रह्म तत्व के लिए अनुभूति पराएं, और सत्य में निरंतर नाम करने वाला हो और नाम रस में डूबा हुआ ऐसा गुरु हो। असदगुरु से काम नहीं चलेगा, ऐसे गुरु को तो छोड़ करके सदगुरु करो, ऐसा भी शास्त्र में विधान। यदि भूल से हो भी गया ऐसे गुरु को छोड़ो, छोड़ करके सदगुरु का आश्रय करो जो भव सागर को तरा करके कृष्ण के पाद पद्मों को प्रदान कर सकता है। इसलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है, किसको? सुखदेव गोस्वामी को। सुत गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतपेतकृत्यम्, जन्म हुआ नाड़ी छेदन नहीं हुई, उपवीत नहीं जिनका हुआ संस्कार, बिना उपवीत संस्कार के पुरुषों के लिए वेद का पठन पाठन नहीं हो सकता, श्रीमद्भागवत इत्यादि में भी अधिकार नहीं मिलेगा, उपभीत उपनिकट में जो बैठा दे, किसके भगवान के चरणों के निकट बैठा देते, उस संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। उपनयति समीपे निकटे आनयति, गुरु कृष्ण के निकट बैठा देता है इस संस्कार के द्वारा। इसलिए कह रहे हैं हमारे गुरु, जो गुरु जन्म हुआ और गृह से निकल गए, उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ और पीछे से पिता उनके द्वार कृष्ण द्वैपायन हा पुत्र हा पुत्र कहते हुए पीछे से दौड़े, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु, किंतु पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो चला गया वन में। और पिताजी हा पुत्र कर रहे हैं तो इसके उत्तर में वृक्षों ने आवाज दी, हा पुत्र हा पुत्र, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन मैया कौन बाप, एकमात्र पिता बंधु जो हैं वो कृष्ण ही हैं। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो प्रणाम कर रहे हैं इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है, वो रहस्य ये जो सुखदेव को प्रणाम कर रहे हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान जैसे, गुरु गुरु साधारण नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है क्योंकि उसका प्रभु व्याप्त है, उसकी सेवा करने के लिए जैसे कृष्ण सबके हृदय में है तो गुरु भी तो ऐसा चाहिए ना जो उनकी सेवा करने के लिए सर्वत्र व्याप्त हो सके, तो गुरु ऐसा होना चाहिए, सबकी मन की बातों को जानने हैं, जानने वाले हैं, सबकी आत्मा की खबर रखने वाले हैं, ऐसे गुरु गुरु हैं। जो अपने ही खबर नहीं खबर रखता तो दूसरों की क्या खबर लेगा, ऐसे गुरु से भाई नहीं होगा, सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। क्यों प्रणाम कर क्यों ऐसा कर रहे, ये सुख हैं कौन, इसका प्रसंग दिया गया है, दिया गया है। एक समय की बात है, राधा जी बरसाने में रहकर अपने एक क्रीड़ा सुख से को हाथों में रख करके, 15 मिनट अभी समय है, अच्छा तो सुन लो, अपने क्रीड़ा सुख को, क्रीड़ा सुख मैंने बड़े प्यार से जिसको प्यार करती थी और सिखलाती थी पढ़ाती थी खिलाती थी, उनका अपना निजस्व वो क्रीड़ा सुख है, उन्होंने अपने हाथे इस हाथ पर रखकर बाएं हाथ पर दाहिने हाथ से उसे दाना अनार का दाना चुना रही खिला रही है, कभी चावल और दूध मिलाकर उसे कुछ कुछ खिला रही है और कहती हैं जो बोलो तो कृष्ण कृष्ण। और सुख ऐसा पक्षी है आप जिस रूप में कहेंगे उसी रूप में उसको दोहरा देगा, ठीक राधा जी के स्वर में वैसे ही नकल करके कृष्ण कृष्ण कहने लगे। बड़ी प्रसन्न राधा जी बार बार उसे बड़ा प्यार करके उसके सिर पर सहला रही हैं, कभी दूध अन्न कभी अनार का दाना उसे खिला रही है और कृष्ण कृष्ण इति पाठयन्त्यो उसको ये पाठ करा रही है और सुख भी बड़े आनंद से पाठ करता है। आपने सुना है कभी तोते ऐसे होते हैं उनको सिखला दो तो वो बोल देंगे पूरा का पूरा, है? क्या वो किसके घाट पे, चित्रकूट के घाट पे, भय संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसत, वो सब पक्षी भी वैसा ही कहता है पूरा का पूरा दोहरा जा। हमारे गांव में एक तेली था, उसको एक तोता एक सुख पक्षी था, तो जो आता साले 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 आ गया आ गया आ गया आ गया, वो बदमाश के घर में था तो वही सीखा, अच्छे घर में होता ना तो वो अच्छी बात सीखता। तो ये राधा जी का सुख क्या पढ़ा रही हैं, बड़े मधुर स्वर से कृष्ण कृष्ण वो बोल रहा है, हठात ऐसे करते करते में वो सुख उनके हाथों से उड़ गया, पासी यहां दो अंगुल का केवल अंतर है, वृंदा नंदगांव और बरसाना में दोनों की सीमाएं एक मिलती है ना, और राधा जी अपने घर से अटारी से ऊपर से कृष्ण को देखती हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, अपनी अटारी से राधिका जी की तरफ में देखते हैं। अपने बगीचे में कृष्ण खेल रहे थे मधुमंगल के साथ में, और ये उड़ता हुआ राधा जी का क्रीड़ा शोक ठीक उसी जगह पहुंच गया जिस उपवन में कृष्ण खेल रहे थे, और एक सुंदर तमाल वृक्ष के ऊपर में बैठकर हरा और उसका पत्ता हरा दोनों मिलकर के एक रंग हो गए और कहने लगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुनकर के कृष्ण कहते हैं ये राधा कहां से आ गई, क्योंकि उनका स्वर पहचानते हैं, वो ठीक राधा जी के स्वर मिला करके कह रहा, उनके तरफ में देखा तो वो फिर कह रहा है ओह मैं बड़ा दुर्भागा हूं, इस जगत में हमारा हमसे कोई दुर्भागा नहीं, मैं श्रीमती जी के हाथों पर कर कमलों पर बैठा हुआ और उनके हाथ से दाना चुंग रहा था अनार का, और जाति के स्वभाव से उड़ करके उस स्वामिनी जी को भूल करके यहां चला आया, मेरे जैसा कोई दुर्भागा नहीं। फिर एक श्लोक पढ़ रहा है, वो श्लोक पढ़ रहा है दुराप जन वर्तिनी, ओहो मैं कृष्ण से प्यार करती हूं किंतु ऐसे लोगों से घिरी हुई हूं जो कि ये नहीं चाहते। चारों तरफ में जटला कुटला इत्यादि हमारी नजरें और सास हैं, जो कृष्ण का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, झूठ मूठ का लांछन लगाने वाली हैं हमारे ऊपर में, ऐसे लोगों से घिरी हुई। और गुरुजनों का वाक्य खबरदार अपने पति के अतिरिक्त कृष्ण से तुम कभी बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, नहीं तो घर से निकाल दी जाओगी। तो दुरापजन वर्तनी, ऐसे लोगों से मैं घिरी हुई हूं और मेरा प्राण छटपट छटपट कर रहा उनसे मिलने के लिए, किंतु मिल नहीं सकती। सवेरे होते ही गैयों को लेकर के वो चले जाते हैं जंगल में, अकेले नहीं लाखों ग्वालों के साथ में, उस समय मिलना संभव है, जंगल में मिलना संभव है। वहां से निकल कर जब यहां आएंगे तो जसोदा मैया इत्यादि लाड़ प्यार से आरती उतारने लगती हैं, खिलाने लगती हैं, कब मैं कैसे मिलूं, छटपट छटपट में प्राण कर रहा है। सुनकर के कृष्ण ने देखा जी तो अद्भुत सुख है, बड़े प्यार उसको करने लगे और प्यार से उनको और सहलाने लगे, अनार का दाना देने लगे और मीठी मीठी बातें बोलने लगे। इतने में अब तो समय हो गया, अब कल कहेंगे, अच्छा तो थोड़ा सा बतला दो, और वो सुख को अपनी तरफ में आजा आजा ऐसे मधुर बोली से कहा कि सुख उड़ता हुआ उनके कंधे पर आकर के बैठ गया। कृष्ण ने कंधे से अपने हाथों में लिया और तुम क्या पढ़ रहा था जरा बोलो तो वही श्लोक, और कृष्ण कृष्ण मधुर बोली से वो बोलने लगा। कृष्ण बहुत आदर के साथ में प्यार से उसे खिलाने लगा। इतने में श्रीमती राधिका जी की सहेली मधुरिका और उसकी एक और सहेली आई, अरे ये तो हमारा प्रिया जी का सुख है, आप कृपा करके इसको दे दीजिए, इसके बिना वो रह नहीं सकती, एक मिनट नहीं रह सकती हैं, प्राण उनके अभी छूट जाएंगे, इसलिए इसके भ्रम में तड़फ रही हैं, जल्दी से इसको दे दो। मधुमंगल ने कहा जी ये तुम्हारी प्यारी जी का ये सुख है श्रीमती जी का, तो तुम बुला लो और तुम्हारे पास में चले, हम उसको पकड़ करके छोड़ रहे हैं, तो तुम बुला लो और चला जाता है तो लेकर के चली जाओ। मधुका ने कहा ये जिसके हाथों में बैठा है उससे ये कहीं उड़ करके नहीं जा सकता है, किंतु इधर हमारे स्वामिनी जी के जो प्राण निकल रहे हैं, हाँ स्वामिनी जी यदि आ जाएं और उसे बुला लें तो उड़ करके जरूर चला जाएगा और किसी के यहां से नहीं जाएगा। एकदम वो खेलने लगे, इसको नहीं दिया। इतने में मैया जसोदा आ गई, अरे तुम मधुरिका यहां पर कैसे आई, तो ये प्रिया जी का सुख है, उसके बिना वो रह नहीं सकती, इनके प्राण निकल रहे हैं और ये दे नहीं रहे। कहा जी ठीक है, तुम लोग शांत रहो, प्रतीक्षा करो। इतने में कृष्ण से बोली जैसे, अरे तुम्हारे पिताजी अभी खाने पीने के लिए, अभी स्नान करने के लिए बैठे हैं, चलो तो स्नान करो और खा पी लो, इसके बाद में इसे खेलना, अभी मत खेलो। सुख को उन्होंने ले लिया उनसे और लेकर के भीतर चले गए, इनका भी हाथ पकड़ करके खींच करके ले गई। इसके बाद में मथुरिका को बुलाया और कृष्ण को खिलाने पिलाने में लग गई। और इधर वो गोचारण के लिए जाना है, कृष्ण कहा जी मैया हमारे तोते को पक्षी को रखना, मैं आऊँगा तो फिर ले लूँगा। हाँ हाँ बेटा मैं जरूर तुमको दूंगी, ये कह करके उनको तो विदा किया। जब वो चले गए तो ये सुख लेकर के माधुरिका को दे दिया, बेटी जल्दी से जाओ और उनको दे दो। जब वहाँ लेकर के पहुँची, राधा जी को हाथों में दिया तो सखियाँ परस्पर और राधा जी कहने लगी, यशोदा मैया अपने बेटे को बहुत प्राण से भी अधिक प्यार करती हैं और उससे भी प्यारा ये सुख को जो जिससे वो खेल रहा था उनको छोड़ करके और उसे लेकर के ये राधा जी के लिए जब दिया है तो ये सुख हम लोगों को रखना नहीं चाहिए, ये उनकी प्रसन्नता के लिए यशोदा मैया के यहाँ भेज दिया जाए।